सूरत सौद रूफ़े मुक़द्दस से शुरू होने वाली एक सूरत है। इसमें भी हम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान के कुछ वाक़यात देखेंगे और यहाँ भी बिल्कुल पिछली सूरतों की तरह आपको अंदाज़ा होगा कि अल्लाह ताला के नबी जो अपने दौर के चुने हुए इंसान थे उनको किन किस्म के हालात से गुजरना पड़ा और उसके बाद अल्लाह ताला ने उनका कितना ज़िक्र खैर कुरान पाक में रखा। بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی قسم اللہ کھا رہا ہے کسی بات کو ثابت کرنے پہ، اس سے قرآن کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں۔ اس کو ہائی لائٹ کریں، عزت وشقاق، ये है अना ईगो। कुरान का सबसे पहला असर जो इंसान पर आता है वो ये है कि उसकी अना पे चोट पड़ती है। अल्लाह ताला इंसान को दबाता है दबाता है और दबाता है और ऐसे अना का जूस निकल जाता है कि इंसान बंदगी की मुंह बोलती तस्वीर देखता है। अल्लाह ताला के नबियों का तस्करा हम सुनते हैं, किसी हुक्म को उन्होंने अना का इशू नहीं बनाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस माहौल में भेजे गए थे वहाँ जो लोग दीन से दूर रहे उनमें से अक्सरियत की वजह ज़िद और तकब्बुर थी। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, इनसे पहले हम ऐसी कितनी ही कौमों को हलाक कर चुके और जब इनकी शामत आई तो वो चीख उठे मगर वो वक्त बचने का नहीं। इन लोगों को इस बात पर बड़ा ताज्जुब हुआ कि एक डराने वाला भी खुद इन्हीं में से आ गया। मुनकरीन कहते हैं, ये साहिर है, सख्त झूठा है, क्या इसने सारे खुदाओं की जगह बस एक ही खुदा बना डाला, ये तो बड़ी अजीब बात है। और सरदाराने कौम ये कहते हुए निकल गए कि चलो और डटे रहो अपने माबूदों की इबादत पर। यहाँ नोट करें, बुतों को पूजने वाले तो इतने स्टबन और इतने जमे हुए अपने माबूदों पर और एक रब को उसकी सारी हकीकतों के साथ पाने वाला फिर उसकी बात पे दूसरों को तरजीह दे, यही तो असल में इंसान का एक इम्तिहान होता है। ये बात तो किसी और ही गरज से कही जा रही है, शक कर रहे हैं अल्लाह के नबी पे। ये बात हमने ज़माने करीब की मिल्लत में किसी से नहीं सुनी, ये भी एक इशू था। ये नई बातें हैं, पहले तो कभी नहीं सुनी। ये कुछ नहीं मगर एक मन घड़त बात है, क्या हमारे दरमियान बस यही एक शख्स रह गया था जिस पर अल्लाह का जिक्र नाजिल किया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के आगाज में अपने ऊपर बात की लेकिन जब अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि आप अपने प्यारों को भी बताएं तो आपने अपने ख़ानदान की एक दावत की। और ये भी एक सुन्नत तरीका है खाना पकाकर दूसरों को दीन की बात सुनाना ताकि पेट के रास्ते हो सकता है कि हिदायत की तरफ चल पड़े। जब सब वहाँ बैठे सब कुछ हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर में अपना पैगाम देना चाहा कि लोगों एक अल्लाह को मानो और वही बात वमाली अलाबुदुल्लज़ी। ये बात सुनकर जो आपके सरदार नुमा चचा और ख़ानदान के बड़े थे वो पाँव पटकते हुए चले गए। उसी मंजर को आपने यहाँ पढ़ा कि सरदार वहाँ से गुस्से में चले गए। आपके मेरे लिए इसमें सोच का नुक्ता है कि हमने कभी अपने बड़ों को भी पैगाम पहुँचाया। बस जब हम अपने बच्चों 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 की बात तो बहुत करते हैं लेकिन ख़ानदान के बुज़ुर्ग गलत तरीक़ों पर लाइलमी की वजह से कोई गलत रस्म करते हैं, कोई गलत तरीका दीन के नाम पर इख्तियार किए हुए हैं, तो कोशिश करनी चाहिए बाइज़्ज़त तरीके से अच्छे तरीके से, फिर उसके बाद अल्लाह ताला जिसके लिए आसानी कर दे। दूसरी बात, सहाबा क्यों मान गए, ये जुमला बड़ा काबिल गौर है। करीब रहने वाले रिश्तेदार खून के भी रिश्ते थे, वो तो ईगो और अना का शिकार हो गए, तकब्बुर और जिद में आ गए। सहाबा का क्या मसला था, लिखिए एक जुमला। आपका बेस्ट हदफ वो शख्स है जिसमें सेल्फ इंपॉर्टेंस का एहसास ना हो, अना की दीवार इतनी मोटी होती है कि बात समझ के भी लोग नहीं मानते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों में कभी सेल्फ इंपॉर्टेंस पैदा नहीं होने दी। बड़े से बड़ा कारनामा भी कोई करके आता ना तो दुआ देते, इस्लाम के गलबे की बात करते, कभी प्यार से बात करते लेकिन मुंह भर भर के अपने तारीफें नहीं की। आज देखिए, शुरू से हम अपने बच्चों की अना को बहुत उभारते हैं, ये इज़्ज़त और शकाक पे बात हो रही है। बच्चों को ज़िद्दी हम खुद बनाते, अपनी बात मनवाने वाला हम खुद बनाते, खुद बरस्ती सिखाते, खुद एतमादी के नाम पर बदतमीज़ कर देते, सेल्फ कंट्रोल हम उनका खुद ख़त्म कर देते। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे, आपके साथ रहने वाले दीन में आगे बढ़ते जाएं, तो आप सबसे पहले उनसे अन्ना को निकाल दें। अन्ना की मौजूदगी में नेकियां नहीं फलती फूलती। ये ऐसा दीमक है कि जो नेकियों की खड़ी फसल को भी तबाह कर देता है, क्योंकि जो गलती ना माने वो रिश्ते नहीं निभा सकते, वो अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक कैसे निभाएंगे। तो उन्होंने देखिए डटने की बात की है गलत पे, अल्लाह हमें सही पे डटने वाला बना दे। अल्लाह ताला कह रहे हैं ये सरदारों का जो असल मसला है ना, वो ये नहीं है जो ये कह रहे हैं, बल्कि असल मसला इनका क्या है, असल बात ये है कि मेरे जिक्र पर ये शक कर रहे हैं, शक। और ये सारी बातें इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने मेरे अजाब का मजा नहीं चखा। अभी इनको शिद्दत का एहसास नहीं है कि अल्लाह जब पकड़ता है तो कैसे पकड़ता है। क्या तेरे दाता और गालिब रब की रहमत के खजाने इनके कब्जे में हैं? क्या ये जमीन आसमान और इनके दरमियान की चीजों के मालिक हैं? अच्छा, तो ये आलम असबाब की बुलंदियों पर चढ़कर देखे। शऊर बेदार करने वाला मामला है। ये तो जत्थों में से एक छोटा सा जत्था है, यानी गिरोह, जो इसी जगह शिकस्त खाने वाला है। इनसे पहले नूह की कौम और आद और मेघों वाले फिरौन और समूद और कौमे लूत और रेका वाले झुटला चुके। जत्थे वो थे जी, इनमें से हर एक ने रसूलों को झुटलाया और मेरी अकूबत का फैसला इन पर चिश्मा होकर रह गया। ये लोग भी बस एक धमाके के मंतजर हैं, जिसके बाद कोई दूसरा धमाका ना होगा। आपको अभी तक की सूरतों में कोई फर्क नहीं दिखा होगा। क्यामत, मुमारी, रसूलों का झुटलाना, बात वो हबीब से शुरू हुई थी और यहां तक पहुंच के देखिए मक्का वालों का मौका बनाकर ये बात समझा दी गई कि जिसके दिल में अपने आप को कुछ समझने का एहसास होगा वो कभी हिदायत नहीं पाएगा, चाहे वक्त का नबी उनके सामने आकर खड़ा हो जाए। वकालू रब्बना अज्जिलना कित्तना या कबल यौमिल हिसाब, और ये कहते हैं हमारे रब यौम हिसाब से पहले ही हमारा हिस्सा हमें जल्दी से दे दे, यानी जो अजाब आना है अभी आ जाए। ऐ नबी सब्र करो इन बातों पर जो ये लोग बनाते हैं, और इनके सामने हमारे बंदे दाऊद का किस्सा बयान करो जो बड़ी कुव्वतों के मालिक थे, हर मामले में अल्लाह की तरफ रजू करने वाले थे। इसको हाईलाइट करें, इन्ना हो वाह। कौन सी चीज है जो अल्लाह को सबसे अहम बनाती है हमारी जिंदगी में? अवाब होना, पलट पलट कर अल्लाह की तरफ तवज्जो जाए। याद रखिए बड़े काम करने के लिए ज्यादा वाप होने की जरूरत होती है। बार बार फैसले करने पड़ते हैं, बार बार इस्तखारे, बार बार मशवरे, क्या करूं क्या ना करूं। अब सर को अल्लाह के आगे झुका दीजिए और ये कह दीजिए कि अल्लाह तू मेरे से सही काम ले ले। आप देखिए कि दाऊद अलैहिस्सलाम अपने वक्त के नबी भी थे और बादशाह भी थे, लेकिन अवाब होने की सिफत ने उनको इतना फायदा दिया कि जिंदगी में जब कोई दुराहा आया उन्होंने रब से पूछा और रब ने फिर उनको गाइड भी किया। हमने पहाड़ों को इनके साथ मुसख़र कर रखा था कि सुबह शाम वो इनके साथ तस्बीह करते थे, परिंदे सिमट आते, सब के सब उसकी तस्बीह की तरफ मुतवज्जे हो जाते थे। अवाब की जुबान से जो बात निकलेगी लोग जरूर मुतवज्जे होंगे। और हजरत दाऊद को अल्लाह ने बड़ी खूबसूरत आवाज दी थी, जब वो जबूर की तिलावत करते तो इर्द गिर्द से उड़ते हुए परिंदे भी उनके पास आ जाते। हमने उनकी सल्तनत मजबूत कर दी, उनको हिकमत अता की, अल्लाह हमें भी अता कर दे, और फैसला कुन बात कहने की सलाहियत बख्शी। इसको हाईलाइट करें, फैसला कुन तबलीग होनी चाहिए, आपकी बात सुनकर सुनने वाला और कंफ्यूज ना हो जाए। ओके, ये भी ठीक तो वो भी ठीक, कुछ ये कहते कुछ वो कहते, ये भी कर लो, नहीं सीधी बात, कुल कौलन सदीदा, और सीधी बात ये कि वह माली अला अबुदुल्लज़ी फतरनी। जब अल्लाह का हक जिंदगी में बंदा महसूस करता है ना, उसके बाद बात सीधी करने की तौफीक मिलती है, और बड़े खुशकिस्मत है वो लोग जिनको सीधी बात कहने वाला कोई मिल गया। वरना लोगों ने तो आज बातों में उलझा कर इंसानियत को अल्लाह से भी बदगुमान कर दिया और रसूल से तो पहले से ही थे। फरमाया फिर तुम्हें कुछ खबर पहुंची हो उन मुकदमे वालों की जो दीवार चढ़कर उनके बाला खाने में घुस आए थे? जब वो दाऊद अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो वो इन्हें देख कर घबरा गए। उन्होंने कहा डरिए नहीं, हम दो फरीक के मुकदमा हैं जिनमें से एक ने दूसरे पर ज्यादती की। ये डरे क्यों? अचानक घर में आप बैठे अपने कंप्यूटर डेस्क पे काम करें और एकदम दीवार से कोई फलांग के अंदर आ जाए, डरेंगे नहीं? इससे पता चलता है कि नबी गैब नहीं जानते थे, कि आने वाले इंसान नहीं बल्कि फरिश्ते हैं। आप हमारे दरमियान ठीक ठीक हक के साथ फैसला कर दीजिए, बेइंसाफी ना कीजिए और हमें राह रास्त बताइए। ये मेरा भाई है, इसके पास 99 यानी 99 दुम्बियां यानी शीप हैं और मेरे पास सिर्फ एक ही दुम्बी है। इसने मुझसे कहा ये एक दुम्बी भी मेरे हवाले कर दे। इसने गुफ्तगू में मुझे दबा लिया। दाऊद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, इस शख्स ने अपनी दुम्बियों के साथ तेरी दुम्बी मिला लेने का मुतालबा करके यकीनन तुझ पर जुल्म किया। और वाक्या ये है, इसको हाईलाइट कीजिए, असल अमल की बात ये है। وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ، سوچیں پھر پڑھیں، مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں۔ بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے اور عمل صالح کرتے ہیں۔ ہاں لیکن ایسے لوگ قلیلماہم، ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں۔ اور یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ جس کا ادراک وہی کر سکتا ہے جو کسی کے ساتھ مل جل کر رہتا ہو۔ یاد رکھیے، انسانوں کی اس دنیا میں میرا آپ کا ایک امتحان ہے، کسی کو کم ملتا ہے، کسی کو زیادہ۔ کسی کو کوئی ایسی خوبی مل جاتی ہے جو دوسروں کی نظروں میں آ جاتی ہے، کسی کو ایسی مل جاتی ہے جو نہیں نظر آتی۔ سورت کے شروع میں عزت و شقاق کی بات کر کے بتا دیا کہ جو انا پرست نہیں ہوگا، سیلف رائٹیسنس کا اس کے اندر جذبہ نہیں ہوگا، اپنی ذات کو نمایاں کرنے کا جذبہ نہیں ہوگا، اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ گاڑی چلتی رہے، چاہے اندر بونٹ میں لگا ہوا ایک تار ہو جو انجن کو بیٹری سے ملاتا ہوں، بس مجھے اتنا پتا ہے کہ میں نہیں رہوں گا اپنی جگہ پہ تو گاڑی رک جائے گی۔ اس کو فرنٹ پہ سٹیئرنگ ہاتھ میں پکڑ کے بہت بڑی سکرین کے اوپر بیٹھنا کوئی فرق نہیں پڑتا اسے، بٹ اپوزٹ شخص پھر زیادتی ہی کرتا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ زیادتیوں سے بچائے۔ آپ دیکھیے کہ شراکت کاروبار میں بھی اچھی نہیں ہے، کیونکہ انسان دو لوگوں کے بیچ میں آتا ہے تو مسئلہ آتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیے کہ ایک ڈش ہے، 10 کباب کسی نے آپ کے سامنے رکھے، کیونکہ کھانے والے 8 تھے، دو انہوں نے ایکسٹرا رکھ دیے، کوئی آ بھی سکتا ہے، اور آپکو باری مل گئی، لائن میں پہلے لگ گئے، تو آپ نے تو 4 کباب پہلی پلیٹ میں ڈال لیے کہ آج تو صرف کباب ہی کھاؤں گی۔ یہ ہے اکثر شریک ایک دوسرے پہ زیادتی کرتے ہیں۔ عقل اور سمجھ اللہ نے دی ہوئی ہے، گھر والے نے کیا چیز کس کے لیے کتنی رکھی ہے۔ یہ ہمارا دین ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ٹوکتا ہے تاکہ ہم قیامت کے دن اس برے معاملے سے بچ جائیں۔ پھر واپس کہا، یہ بات کہتے کہتے داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ تو اس نے دراصل ایک آزمائش کی ہے، چنانچہ انہوں نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گئے اور رجوع کر لیا۔ پیچھے کیا تھا؟ اواب، یہاں کیا ہے؟ اناب۔ یہ بہت ہی خوبصورت ایک عمل ہے۔ آپ دیکھیے کہ دوسروں کے حالات سے اپنے لیے نصیحت لینا، اس کو ہدایت بیانی کہتے ہیں۔ ایک گائیڈنس وہ ہے جو آپ اور میں قرآن پڑھ کے لیتے ہیں، اور ہدایت کی 10 قسمیں میں نے پچھلے سالوں میں لکھائی تھی، آج صرف الہدل بیانی کو سمجھ لیں۔ آپ کہیں جاتے ہیں، کوئی بات ہوتی ہے، ایک دن اگلا بندہ وہ آپ سے سوال کرتا ہے، چلے آپ کو نہیں سمجھ آئے گی میں اپنے پر لیتی ہوں، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ، کہنے میں بھی برا لگتا ہے۔ صبح میں نے اپنے ہسبینڈ سے جھگڑا کیا اور ذرا سی بدتمیزی کر دی، اللہ مجھے کبھی توفیق نہ دے، یہاں آ گئی، آپ کو تو نہیں پتا، پڑھانا شروع کر دیا، کوشچن آنسر شروع ہو گئے۔ ایک پرچی آتی ہے اور اس پرچی پہ لکھا ہوا ہے، شوہر کے ساتھ جھگڑے کی صورت میں بدتمیزی کرنا کیسا ہوتا ہے؟ اب یہ سوال آپ کے لیے کہ میرے لیے؟ اس کو الہدل بیانی کہتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ القیسو من وعد بغیرہ، رو خلاصہ ہے بات کا، عقل مند وہ ہے جو دوسرے کے حالات سے خود نصیحت لے لے۔ تو زندگی میں دن رات ایسا ہوتا ہے، کسی کو کوئی بات کہہ کے آتے ہیں وہ آپ کے اپنے آگے آ جاتی ہے۔ یقین کریں یہ جو لفظ جہاں بول کے جاتی ہوں نا، یہ اگلے دن آنے تک باز گشت بن کے میرے اپنے دل دماغ پہ گونجتا ہے، فون میں، میسیجز میں، کئی جگہ مجھے اپنی کئی بھی باتیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ آج یہ کہہ کے آئی ہوں نا، یہ ہوگا، آج یہ بڑی بات کر دی ہے نا، اب یہ آگے آئے گی۔ اللہ نے انسانوں کی اس دنیا میں ہمارے بہت سارے خاموش استاد رکھے ہیں۔ تو داؤد علیہ السلام نے اس موقع پہ اللہ کے آگے جھک کر سجدہ کیا، کیا پتہ چلا کہ اپنی کوئی غلطی دکھے، کوئی کمی بیشی ہو تو فوراً اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں۔ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ، اور ہم نے ان کا قصور معاف کر دیا۔ یقیناً ہمارے ہاں اس کے تقرب کا بہت اعلیٰ مقام اور بہتر انجام ہے۔ یعنی اللہ اپنے نبیوں کے واقعات جہاں لا کر ہمیں بتاتا ہے کہ ان میں انا نہیں ہوتی تھی، ایگو نہیں ہوتی تھی، کسی اور کے واقعے میں दाऊद अलैहिस्सलाम को अपना हाल दिखा। दूसरी बात देखिए, जिसके पास पहले ही 99 है वो एक और लेना चाहता है, इसको कहते हैं 9 और 99 का चक्कर, और जिसके पास एक है कहते हैं उससे भी ये ले लो। ये भी तो ज्यादती, आज के दौर में आप यही चीज यहां देख सकते हैं। इसलिए हमेशा याद रखना चाहिए कि अपने हक से कम लें और अपनी जिम्मेदारी से ज्यादा दें, यानी कमिटमेंट कम की हो लेकिन ऑफर ज्यादा करें। इंशाल्लाह दुनिया का निजाम चलता रहेगा। हमने उनसे कहा है, दाऊद हमने आपको जमीन में खलीफा बनाया, बस आप लोगों के दरमियान हक के साथ हुकूमत करें और ख्वाहिश नफ्स की पैरवी ना करें। हाईलाइट कर लें, ईगो, इज्जत और शिकाक का जो मुहरक होता है ना, वो ख्वाहिश होती है। वरना क्या होगा, वो तुझे अल्लाह की राह से भटका देगी। जो लोग अल्लाह की राह से भटकते हैं यकीनन उनके लिए सख्त सजा है कि वो यौमुल हिसाब को भूल गए। अल्लाह हमें यौमुल हिसाब को भूलने से बचा दे। हमने इस जमीन और आसमान को और इस दुनिया को जिनके दरमियान है फजूल पैदा नहीं किया। तख्लीक कायनात का मकसद, पर्पज ऑफ लाइफ, ये तो इन लोगों का गुमान है जिन्होंने कुफर किया, और ऐसे काफिरों के लिए बर्बादी है जहन्नुम की आग से। क्या हम इन लोगों को जो ईमान लाते हैं और नेक अमल करते हैं और इनको जो जमीन में फसाद करने वाले हैं यकसां कर देंगे? क्या मुत्तकियों को हम फाजिरों जैसा कर दें? ये एक बड़ी बरकत वाली किताब है जो है नबी हमने आपकी तरफ नाजिल की ताकि ये लोग इसकी आयात पर गौर करें और अक्ल और फिक्र रखने वाले इससे सबक लें। क्या पता चला इस आयत से कि ख्वाहिश नफ्स के पीछे भटकने वालों को हमेशा ही नुकसान होता है और वो अल्लाह ताला के आगे झुकते नहीं। दूसरी बात पता चली कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने तौबा की और सजदा किया। आज हमारी शरीयत में सलात व शुक्र तो कहीं नहीं है। हाँ, जब अल्लाह के नबी को कोई खुशी की खबर पहुंचती तो आप शुक्र में सजदा करते थे। तो आपको मुझे अगर कोई गुड न्यूज मिले तो फिर आप सजदे में जा सकते हैं। हाँ, तौबा की नमाज का जिक्र मौजूद है। कभी अपना कोई गुनाह याद आए, वजू करें, दो नफिल पढ़े, रो धो के माफी मांग लें कि अल्लाह मेरे इस गुनाह को माफ कर दे। आज तक भी छुपाया हुआ है तो बाद में भी छुपा दे। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके दिल से उस गुनाह का गिल्ट और उसका बोझ भी हटेगा, क्योंकि हम अपने दिलों पर ये बोझ लेकर ज्यादा दिन नहीं चल सकते। बस अब शैतान हमें हमारी पिछली जिंदगी के गुनाह याद कराता है, कहते तेरी क्या बख्शिश होनी है, तूने कहा अच्छा होना है, तू तो इतना कर चुकी वो कर चुकी। नहीं, जब चाहे अल्लाह ताला के सामने झुकिए, अल्लाह सुभान ताला आपके लिए आसान करेगा। और दाऊद चूंकि बाप थे अच्छे थे तो अब अल्लाह ने औलाद भी अच्छी दी, और दाऊद अलैहिस्सलाम को हमने सुलेमान जैसा बेटा अता किया, बेहतरीन बंदा, नेम अलब्द, जिसको अल्लाह बेहतरीन कहे वो कैसा होगा। कसरत से अपने रब की तरफ रजू करने वाला बाप क्या था, अब्बाब, तो बेटा क्या निकला, इन्नहु अब्बाब, जैसा बाप वैसा बेटा। काबिले जिक्र है वो मौका जब शाम के वक्त उनके सामने खूब सुधे हुए घोड़े पेश किए गए तो उसने कहा, मैंने इस माल की मोहब्बत अपने रब की याद की वजह से इख्तियार की है। यानी आप अपनी माल, अपनी गाड़ी, अपनी चीजों में हर उस चीज से प्यार करें जो आपको अल्लाह का कुर्ब देती है। मसलन इस वक्त क्या चीज है, अपनी गाड़ी से प्यार करें जो आपको यहां तक ले आई। तो आज जाके आप भी सुलेमान की तरह गाड़ी पे जरा हाथ फेरिएगा कि थैंक यू माई कार, तुमने मुझे यहां पहुंचा दिया। और वो गाड़ी जो फजर के लिए निकले और वो गाड़ी जो 5 वक्त मस्जिद के लिए निकले, वो उस गाड़ी से बेहतर है जो डैश। बाकी बातें आप खुद ही समझ जाते हैं। हमेशा अपनी चीजों को, अपनी नेमतों को दीन के लिए इस्तेमाल करें तो वो नेमत है। आप इंशाल्लाह आज की दुआ में से भी आपको इसका इशारा मिलेगा। जरूरत इस बात की कि इन नेमतों को इस्तेमाल करें, इनको खुदा बनाकर पूजने ना लग जाएं और सिर्फ इन्हीं को इधर उधर ना लेकर बैठ जाएं, बल्कि इनको इस्तेमाल करें। यहां तक कि जब वो घोड़े निगाह से ओझल हो गए तो उन्होंने हुक्म दिया, इन्हें मेरे पास वापस लाओ। फिर लगे इनकी पिंडलियां और गर्दनों पर हाथ फेरने। और देखो, सुलेमान को भी हमने आजमाइश में डाला और इसकी कुर्सी पर एक जसद लाकर डाल दिया। फिर उन्होंने रजू किया और कहा है, ऐ मेरे रब, मुझे माफ कर दे और मुझे वो बादशाही दे जो मेरे बाद किसी के लिए सजावार न हो। बेशक तू ही असल दाता है, तू ही असल देने वाला है। तब हमने उनके लिए हवा को मुसख़र कर दिया जो इनके हुक्म से नरमी के साथ चलती थी जिधर वो चाहते थे, और शयातीन को मुसख़र कर दिया। अपनी एयरलाइन थी हजरत सुलेमान की, अपनी मर्जी से जहाज चलाते, हवा को ऊपर करते नीचे करते, उसकी स्पीड कम करते। है कोई आज दुनिया की कोई एक ताकत भी इतनी खुद कफील? तो उन्होंने ये सब तरक्कियां कब की, जब अल्लाह को छोड़ा, नाराज के नहीं। ममारी अलाबुदुल्लजी, जब मुसलमान हुक्मरान अल्लाह से डरने लग जाएं, वल्लाह ही आज भी अल्लाह ऐसे काम कर सकता है। कल तो हवाएं थी, आज तो अल्लाह आपको पूरी दुनिया में घूमने फिरने के मौके दे दे। हम नाफरमानियां करके और अपनी तौहीद को कमजोर करके खुद अपने आप को कमजोर करते हैं और शैतान को मुसख़र कर दिया। हर तरह के मेमार और गोताखोर और दूसरे जो जंजीरों में पाबंद थे, हमने उनसे कहा ये हमारी बख्शिश है, तुझे इख्तियार है, जिसे चाहे दे और जिससे चाहे रोक ले, कोई हिसाब नहीं। कहते हैं कि हजरत सुलेमान को जितनी भी नेमतें मिली थी, क़यामत के दिन उसका हिसाब नहीं होगा। ये इनकी एक ख़ास बात है। आपको मुझे कोई कह दे हाँ जी कोई हिसाब नहीं, फिर देखें हम क्या करते हैं। चीज़ें तो जमा जो करेंगे, जो उलट पुलट बोलेंगे, किसी बात का हिसाब नहीं। ज़्यादतियाँ करो, जुल्म करो, जो मर्जी करो, मेरे लिए सारी दुनिया का जीना धोबर कर दें। अल्लाह अकबर। अल्लाह हमें बग़ैर हिसाब के जन्नत दे दे। यकीनन उसके लिए हमारे यहाँ तकर्रुब का मुकाम और बेहतरीन जाम है। और हमारे बंदे अय्यूब का जिक्र करो, जब इसने अपने रब को पुकारा कि शैतान ने मुझे तकलीफ और अजाब में डाल दिया, हमने उसे हुक्म दिया कि अपना पांव जमीन पर मारो, ये है ठंडा पानी नहाने के लिए और पीने के लिए, हमने उसे और इसके अहले याल वापस कर दिए और इनके साथ इतने ही अपनी तरफ से रहमत के तौर पर और अक्लो फिक्र रखने वालों के लिए दर्स के तौर पर, और हमने उनसे कहा कि तिनकों का एक मुठ्ठा ले लो। मुठ्ठा किसको कहते हैं? झाड़ू, यानी एक मुट्ठी में जो तिनके आए, और इससे मार दे, अपनी कसम न तोड़। हमने इसे साबिर पाया, बेहतरीन बंदा, वो अपने रब की तरफ बहुत रजू करने वाला। क्या खूबी आ रही है हर नबी की दर? अवाब। तो दुआ करे अल्लाह में अवाब बनाए, और अवाब ही है जो ये कहता है वमा अली अला अबुदुल लजी फतरनी। फुकस, झुका हुआ, अंदर से टूटा हुआ शख्स। हजरत अय्यूब का किस्सा आपने यहां भी पढ़ा, पीछे भी पढ़ा था। 18 बरस तक कहते हैं कि बीमार रहे, करीब वाले सब छोड़ गए। जब हम खाते पीते हैं और जवान होते हैं ना, सब हमारे साथ होते हैं, दोस्ती करते हैं, लेकिन जब जिस्म भी काम करना छोड़ दे तो दूसरे भी छोड़ जाते हैं, और जो खलियान थे, गेत थे, वो सब उनके ख़त्म हो गए। लेकिन साबिर थे, अल्लाह ताला ने उनको क्या दिया? वो सब कुछ दे दिया जो पहले था, उससे भी ज्यादा दिया। कहते हैं कि इनके खलियान में गंदम उगती थी और ऊपर से एक बादल आया और उसमें से सोने की टिड़ियां बरसी, चांदी की पत्रियां इनके ऊपर अल्लाह ने बरसाई। सब्र करने वालों को अल्लाह ऐसे ही बदले देता है, और अल्लाह हमें साबिर बना दे। और हमारे बंदों इब्राहिम और इसहाक और याकूब का जिक्र करो, बड़ी कुव्वत अमल रखने वाले। ये नोट करें, कुव्वत अमल सबसे बड़ी कुव्वत है। बेकार लोग कुछ भी नहीं होते। आप खुद देखें, आप घर में फारिग बैठे हैं, बेकार हैं, ऐसे सुस्ती सुस्ती सुस्ती, इतने में कोई आ जाए या आपको कोई चैलेंज दरपेश हो जाए तो एनर्जी कहाँ से आती है? भाग भाग के काम करते हैं। आजकल मगरिब चले लेट हो रही है, लेकिन रमज़ान में देखिए इफ्तारी तक सारा खाना तैयार हो जाता है। आमतौर पर दावतें पकाएं तो 10 बजे तक खाना ही नहीं रेडी होता। कुव्वत अमल से ताकत मिलती है। बेकार लोग अपने आप को ज़ाया करते हैं, तो लिहाजा अभी नहीं तो कभी नहीं। अपनी जिंदगी से सुस्ती को निकालें, डेली डेली निकाल दें, मैं नहीं कर सकती, मेरे से नहीं होता। अब ये आती कैसे, ये आगे पता चल रहा है। हमने इनको एक खालिस सिफत की बिना पर बरगजीदा किया था, और वो दारे आखरत की याद थी। जो चीज मुझे आपको इस जिंदगी से फायदा उठाने पे माइल करेगी, वो आखरत की याद। कैसे? लिखिए, अपने हर दिन को ये सोचकर गुजारें कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। अगर आपको मुझे पता तो चल जाए कि ये आज के जो चंद घंटे रह गए हैं, बस ये आखिरी घंटे हैं, कैसे गुजारेंगे? पता नहीं क्या क्या रुका होगा। अब देखिए, कुछ लोग आखिरी वक्त पे काम करते हैं, लास्ट मोमेंट, फ्लाइट पे जाने से पहले काम कर रहे होते हैं। क्या हम भी अपनी मौत का इस तरह इंतजार कर रहे हैं? मलकुल मौत को देखकर पैकिंग शुरू करेंगे? यकीनन हमारे यहाँ इनका शुमार चुने हुए नेक लोगों में है। और इस्माइल और यसा और जुल्किफिल का जिक्र करो, ये सब नेक लोगों में से थे। आज ऐसे लग रहा है पूरा पारा नबियों की तारीफों में भरा हुआ है। आगे भी आते हैं पारे, लेकिन आज तो एक अजीब ही रंग है। क्या पता चला कि नबूवत का मकसद फिक्र आखरत का लग जाना, लोगों की आखरत की फिक्र और अपनी आखरत का बेहतर होना। फिर इसी तरह से आप देखिए कि यहाँ अल्लाह सुबहान तआला ने बागे कुछ जन्नत की नेमतों का तस्करा किया है। अपने आप को तसव्वुर की आंख से वहां देखते हुए सुनिएगा। फरमाया, ये एक जिक्र है, अब सुनो। मुत्तकी लोगों के लिए यकीनन बेहतरीन ठिकाना है। हमेशा रहने वाली जन्नतें, लफ्ज हमेशा पे गौर करें, जिनके दरवाजे इनके लिए खुले होंगे, इनमें वो तकिया लगाए बैठे होंगे, खूब खूब मेवे और मशरूबात तलब कर रहे होंगे, इनके पास शर्मीली हमसिन यानी हम उम्र बीवियां होंगी। ये वो चीज है जिन्हें हिसाब के दिन अदा करने का तुमसे वादा किया जा रहा है। ये हमारा रिस्क है जो कभी खत्म नहीं होने वाला। ये तो है मुत्तकियों का इंजाम और सरकशों के लिए बदतरीन ठिकाना जहन्नुम में, जिसमें वो झुलसे जाएंगे और बहुत ही बुरी क़यामगाह। कौन सा अंजाम बेहतर है, किसका हाल अच्छा है, किसका बुरा है? आप देखिए कि हदीस में आता है कि पीर और जुमेरात को जन्नत के दरवाजे खुलते हैं। यहाँ जन्नत के दरवाजों की बात है। दरवाजे का खुलना किसी के वार्म वेलकम की दलील होता है कि आपके लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। दुनिया में मुत्तकी नेकियां कर करके दरवाजे खुलवाता गया। लिखें एक जुमला, दुनिया में नेकियों के दरवाजों का खुलना जन्नत के दरवाजों के खुलने का जरिया बनेगा इंशाल्लाह। अपनी जिंदगी को जाया होने से बचाएं हम सब, अभी नहीं तो कभी नहीं। जो नेकी आज सामने है उसको डिले ना करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में 70,000 लोग इस तरह दाखिल होंगे कि एक दूसरे के हाथ पकड़े होंगे और उनके चेहरे चांद की तरह चमक रहे होंगे। अल्लाह आपको मुझे उसमें दाखिल कर दे। फरमाया, जन्नत के दरवाजे हर पीर और जुमेरात को खुलते हैं, सबको उसमें दाखिल कर दिया जाता है सिवाय शिर्क करने वालों के। वमाली अला अबुदुल्लजी फतरनी, तो शिर्क की हर छुपी हुई चीज को भी अपने जिंदगी से निकालना है। अल्लाह ताला आपको मुझे बुरे अंजाम से बचाए। अगली आयतों में कड़वा सा टेस्ट है। फरमाया, हाजफल यजूकू हमीमुम वगस्साक, ये है इनके लिए बस वो मजा चखे खौलते हुए पानी और पीप लहू और इस किस्म की दूसरी तलखियों का। दुनिया में कितने टेस्ट कॉन्शियस थे, कतरा सा टेस्ट चेंज हुआ पटक के फेंक दो, थ्रो इट, ट्रैश कर दो, वहां कज लहू पीना पड़ेगा। कहीं हॉट ड्रिंक्स के आदि, कहीं कोल्ड ड्रिंक्स के आदि, वहां क्या पीने को मिल रहा है? वो जहन्नुम की तरफ अपने पैरों को आते देखकर आपस में कहेंगे, ये एक लश्कर तुम्हारे पास घुसा चला आ रहा है, कोई खुश आमदीद उनके लिए नहीं। यानी आपको देखकर बिल्कुल खुशी नहीं हुई, आपको आता देखकर बिल्कुल कोई वेलकम नहीं। ये आग में झुलसने वाले हैं, वो इनको जवाब देंगे, नहीं बल्कि तुम ही झुलसे जा रहे हो, कोई खैर मुकद्दम, कोई वेलकम तुम्हारे लिए नहीं। तुम ही तो ये इंजाम हमारे आगे लाए हो, कैसी बुरी है ये जाए करार। देखिए, दुनिया की गहरी दोस्तियां वहां जाके किस नफरत में बदल रही हैं। तो लिहाजा आज अपनी दोस्तियों के किबले ठीक कर लें। फिर वो कहेंगे, हमारे रब जिसने हमें इस इंजाम को पहुंचाने का बंदोबस्त किया, इसको दोजख का दोहरा अजाब दे। और आपस में कहेंगे, क्या बात है, हम इन लोगों को कहीं नहीं देखते जिन्हें हम दुनिया में बुरा समझते थे। किनको भला? मौलवी, हमने तो यूं ही इनका मजाक बना लिया था। मजाक बनाते हैं ना लोग इस लफ्ज का। कहेंगे, वो किधर गए, या वो कहीं नजरों से ओझल हैं? बेशक ये बात सच्ची है, अहले दोज़ख में यही कुछ झगड़े होने वाले हैं। ऐ नबी, इनसे कहो, मैं तो बस खबरदार करने वाला हूं, कोई हकीकी माबूद नहीं मगर अल्लाह, जो यकता है, सब पर गालिब, आसमानो जमीन का मालिक और इन सारी चीजों का मालिक जो इनके दरमियान है, जबरदस्त तौर दरगुजर करने वाला। इनसे कहो, ये एक बड़ी खबर है जिसको सुनकर तुम मुंह फेरते हो। आज दुनिया में लोग क्या कहते हैं, कुछ नहीं होना, मुंह फेरते हैं, देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तो याद रखिए, ये बहुत बड़ी बात है। ऊपर से जलने का अजाब और अंदर से दिल जल रहा है हसरत अफसोस के साथ। दुनिया में बाज दफा हम दूसरों की बुराइयों को बर्दाश्त कर लेते हैं कि नहीं ताल्लुक ना खराब हो, वहां उनको जलते देखना कैसा लगेगा। तो दुआ कीजिए कि हम अपने प्यारों की हिदायत का जरिया बन जाएं। आदम और इबलीस के किस्से की तरफ आयतें चलती हैं। इनसे कहो, मुझे इस वक्त की कोई खबर ना थी जब मलए आला में झगड़ा हो रहा था। मुझको तो वही के जरिए से ये बातें सिर्फ इसलिए बताई जाती हैं कि मैं खुल्लम खुल्ला खबरदार करने वाला हूं। जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा, मैं मट्टी से एक बशर बनाने वाला हूं, फिर जब मैं इसे पूरी तरह बना दूं और इसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम इसके आगे सजदे में गिर जाओ। फरिश्तों का कोई अना का इशू नहीं था, इज्जा और शिकाक नहीं था, फौरन झुक गए। इस हुक्म के मुताबिक फरिश्ते सब के सब सजदे में गिर गए, मगर इबलीस ने अपनी बड़ाई का घमंड किया और वो काफिरों में से हो गया। रब ने फरमाया, इबलीस तुझे क्या चीज इसको सजदा करने से रोकने वाली हुई जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया? तू बड़ा बन रहा है या तू है ही कुछ ऊंचे दर्जे की हस्तियों में से? याद रखिए, जो अन्ना का शिकार होता है वो बड़ा होता नहीं है, खुद को बड़ा समझता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे पहाड़ है, उसके ऊपर जाके कोई खड़ा हो और दूसरे लोग उसको नीचे छोटे छोटे दिखेंगे ना, तो वो ये समझे मैं इतना ऊंचा हूं और दूसरे बिल्कुल कीड़े मकोड़े हैं। हालांकि दूसरों को वो दूर से क्या दिख रहा है तो वो बोना हाँ पहाड़ पे चढ़ गया। तो तकब्बुर और खुद पसंद शख्स दूसरों की नजरों में कभी भी बड़ा नहीं होता, ये अलग बात है कि उसको दूसरे छोटे लगते हैं। आज देखिए ये बड़ाई का एहसास हमारे अंदर कहाँ कहाँ है। जरा सा कोई ऐसा कपड़ा आ जाए मार्केट में कि जो आम हो जाए, और कोई फ्रेंड मेड्स पहन ले और आपका भी हो। एक सिस्टर ने कहा कि मैं तो वो कपड़ा ही नहीं पहनती जो मेरी मासी पहन के आ जाती है, कोई दूसरा उसको दे दे मैं तो उतार के फेंक देती हूँ कि मैंने नहीं ये पहनना। आप देखिए, आपके मेरे पास बड़े बनने का कोई मौका नहीं है, बड़ाई एक ही चीज़ में। आगे 26वें पारे में पढ़ेंगे, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाह यत्काकुम। तकवा में बढ़ते जाएं, अल्लाह ताला बाकी चीज़ों से आपको बेन्याज करेगा इंशाल्लाह। इसने जवाब दिया, मैं इससे बेहतर हूँ, आपने मुझको आग से पैदा किया और इसको मिट्टी से। या फिर देखिए ना, लॉजिक्स दे रहा है, दलीलें पेश कर रहा है अपनी नाफरमानी की। फरमाया, अच्छा तू यहां से निकल जा, तू मरतूत है और तेरे ऊपर यौमुल जजा तक मेरी लानत है। वो बोला है, मेरे रब ये बात है तो फिर इस वक्त तक के लिए मुझे मोहलत दे दे। किस बात की मोहलत मांग रहा है? तौबा की? नहीं, और गुनाहों का बोझ उठाने की कि मैं अब दूसरों को भी बहका लूं। ये है ना प्रस्त लोगों का हाल। जब ये लोग दोबारा उठाए जाएंगे उस वक्त तक की मोहलत दे दो। फरमाया, अच्छा तुझे उस रोज तक की मोहलत है जिसका वक्त मुझे मालूम है। इसने कहा, तेरी इज्जत की कसम है, इन सब लोगों को बहका कर रहूंगा सिवाय तेरे इन बंदों के जिन्हें तूने खालिस कर लिया। शैतान का वार जिस बंदे पे नहीं चलता वो मुखलस है। जैसे स्टील को या धात को आग नहीं लगती ना आमतौर पे, कपड़े को लग जाती है, लकड़ी को लग जाती है, इस तरह इखलास को आग नहीं लगती। फायर प्रूफ है इखलास, अल्लाह आपको मुझे अदा कर दे। तो हक ये है और मैं हक ही कहा करता हूं कि मैं जहन्नुम को तुझसे और इन सब लोगों से भर दूंगा जो इन इंसानों में से तेरी पैरवी करेंगे। कौन रोक सकता है अल्लाह को ये कहने से? उसकी मखलूक, उसकी आग, उसके बंदे, उसके जिन। असल बात ये है कि अल्लाह ताला यहां मुतकब्बिरीन को खबर दे रहा है कि अगर बड़ा बनोगे तो याद रखना वहां पकड़े जाओगे। और याद रखिए, सबसे बुरी बड़ाई इल्म वालों की बड़ाई है। दीनदारों का नुमाया होना भी जो है सो है, दूसरों से आला होना, दूसरों के साथ तकाबुल करना, अपने गुण गाना, ये सारे कामों को मट्टी में मिला देगा। एक कौल है, कहते हैं कि आलिम का शैतान भी आलिम ही होता है। सबसे जहरीला तकब्बुर दीन वाले का तकब्बुर है, और दूसरों को तो कुछ हम समझते नहीं। आवाज में इतनी रौनत, इतनी तलखी, ये भी हराम, ये भी गलत, ये भी जहन्नमी, ये भी काफिर, ये भी मुनाफिक। तो अपनी जुबान को हत्तुल वसा नरम रखें जब नए लोगों से बात करें। आपको क्या पता वो कितनी अना पे चोटें खा के आपके पास पहुंचे हैं। उन गरीबों को तो अभी सीधी तरह से नमाज नहीं पढ़नी आती, आप उनको बड़ी बड़ी बातों पर काउल जाते हैं। तो यहां आप तबलीग की चंद बातें, आखिरी आयतें, लेकिन बड़ी अमल की बातें हैं। एनबिन से कह दो, मैं इस तबलीग पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता और न मैं बनावटी लोगों में से हूं। ये तो एक नसीहत है तमाम जहान वालों के लिए, और थोड़ी मुद्दत ही गुजरेगी कि तुम्हें इसका हाल मालूम हो जाएगा। क्या पता चला? दीन के काम में अजर की उम्मीद नहीं रखनी। देखिए, अजर किस सूरत में है? बास दफा तारीफ भी एक अजर बन जाती है, शोहरत भी एक अजर बन जाती है, मुराद मिले, हमारे लिए क्या डिस्काउंट्स हैं, ये भी एक कह लीजिए कि रास्ते की रुकावट बनती है। और दूसरी बात, बनावटी नहीं, तकल्लुफ में है तकलीफ ज्यादा। दीन के काम में तकल्लुफ और तकलीफों को सहना, ये याद रखिए दूसरे लोगों को भी मुश्किल में डालना है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इन सारी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। तिलावत सुनते हैं आखिरी आयतों की।
إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں ہی سمجھ دے رہے ہیں.